ये है 25590 प्लस पेज नंबर 6 रजिस्टर नंबर 7। गीत है आश्रु दिन आयाज मीठे मीठे चीज चिल्ड्रन मीठे मीठे कितने बच्चों ने गीत सुना। क्या सुना? कौन सा दिन? जिस दिन का 63 जन्म के इंतजार था। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प किस मासूम को याद किया? आखिरी वह मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते। मासी बाप को पुकारते हम आशिक हैं, वो मासी है, ये भी कोई नहीं जानती। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही सुख बुद्धि बनाई दी है, ये इतना भी नहीं जानते। क्या ये आत्माएं उस परमात्मा की आशिक है और वो हमारा मासी है, तो क्या समझते? ये भी समझता है कि हम मासी हैं और परमात्मा हमारा आशिक है। तो इतना सुख बुद्धि बनाई दी है, खास भारतवासी तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए। तो सुख बुद्धि अपने धर्म को भूल जाना है, ये है सुख बुद्धि का काम। अब ये सिर्फ तुम ही जानते हो क्या कि हमारे धर्म की मुख्य धारणा है सहनशील का। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था, फिर 1250 वर्ष रामराज्य था, उस समय अथाशित था। किसी को याद करके रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये पास हो गए, सत्य की आय कितनी थी ये भी कोई नहीं जानती। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर के समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाई दी है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचयिता और रचना की आदि में अंत को हम जान गए। कल नहीं जानते, आज जाना। जितना जितना जानते जाते उतना खुशी में रहते, तो खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर के अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, बरोबर बाप ने हमको स्वर की राजाई दी थी, फिर हमने गवाई दी। अभी सती तो बन पड़े हैं, सती उसको पति तो नहीं कहेंगे, वो है ही पावन दुनिया। मन से कहते हैं हे पति तो पावन आओ, तो कैसी दुनिया हुई? ये तो सती दुनिया हुई। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो नहीं सकता। ऊंच के ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने, क्यों नहीं ऊंच हो सकता? ऊंच के ऊंच बाप के बच्चे तो बने नहीं है रावण राज्य में। रावण के बच्चे जरूर नीचे के नीचे कुछ बुद्धि होनी। तुम बच्चों ने बाप को जाना है तो भी नंबर वार पुरुषार्थ किया, अपने दिल से सही लौट करके पूछो। अमृत वेले का समय अच्छा है, सवेरे अमृत वेले बैठ करके ये ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, वो गॉड फादर भी कहते ही है, वे परम पिता परमात्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वो हमको मिला है, हम फिर से वेद का बच्चा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और यह है देहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उसे देहद के बाप को याद करते हैं। बच्चों का बाप, पतियों का पति, वो हिंदू भारतवासी ये कहते हैं क्योंकि अभी मैं बापों का बाप और पतियों का पति बनता हूँ। कब? संगम युग में बनता हूँ। प्रैक्टिकल में तो गायन चला आता है परमात्मा के लिए। मेरी खास भारतवासियों का गायन है क्या कि वो बाप भी है तो पतियों का भी पति है। तुम्हारा उसके पति के साथ बुद्धि योग तोड़ाए।
हम अपने साथ लगाता हूँ।
ये तो तुमको जन्म जन्मांतर दुख देते। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते। अभी फिर तुमको भी से पूरी ससुर घर ले जाता हूँ। ये है तुम्हारे बाप का घर, तुम ससुर घर जाओ। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा समझाया जाता है। अभी तुम पियर घर में हो, तुमको पढ़ाया भी जाता है, तुम इस ज्ञान से सजे करके विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। यहाँ आए हो विश्व का मालिक बन गए। कहाँ? बाप के पास। संगम युग में तुम आए हो विश्व का मालिक बन गए। तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे जबकि सचिव था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी क्या है? अभी तो हम सेवाधारी हैं। अभी हम कोई मालिक बने में नहीं है। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी है। हम तो संगयुगी फिर हम सचिव में सारे विश्व के मालिक बने। तो संगम युग तो होते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण कोई मालिक राजा नहीं होते हैं। ब्राह्मण तो होते हैं सेवाधारी। तो ये बात है, तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि बाबा हमको भी किसी बात ही दे गए, हमको राजा रानी बनाए गए, अब हम सब के ऊपर कंट्रोल चला। तो तुम जानते हो कि बाबा विष्णु की वास्ताई देने वाला आया है, अभी भी नहीं है, अभी आया है। तो जरूर कोई ऐसे भी होंगे जो अपने को समझते होंगे कि बाबा हमको राजाई देंगे। अभी संगम युग पर वह बाबा आए। मनुष्य तो घोर अंधियारे में जो समझते हैं कि हमको राजाई मिल गई। कह देते हैं कलयुग की आय 40,000 वर्ष है, कोई फिर ऐसे भी जो कहते अभी सचिव आने में तो बहुत लंबा समय है। तो अब ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे समझते हैं कुंभकर्ण की युद्ध में सोए हुए, अज्ञान युद्ध में सोए हुए हैं। यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में तो कोई ऐसे नहीं कहता। तो कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, सब कहते हैं बिना सामने खड़ा है। तू कहता है क्या? मुख से नहीं कहते हैं, लेकिन कर्म और चलन ऐसे चलते हैं जिससे लोग ये समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में क्या भरा हुआ है। क्यों? मान लो कोई महल माड़ी बना रहा है और उसमें अखूट पैसा लगा रहा है, ढेर सारा लोहा, ढेर सारा सीमेंट, तो उससे क्या समझ जाएंगे लोग? क्या समझेंगे? कहते हैं ये, लेकिन अंदर से नहीं समझते कि अभी दुनिया का बिना सामने खड़ा। क्योंकि अगर ये समझते हो कि दुनिया का काम बिना सामने खड़ा हुआ, तो ये इतने मजबूत महल मारी है, अटारियां क्यों बनाते चले जाते? मुझे फिर क्या करता है? तुम जानते हो अभी विश्व की बात सही देने वाला आया है संगम युग पर। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, अज्ञान युग में सोए हुए। सुलाया किसने है? भक्ति मार्ग के गुरु लोग। भक्ति मार्ग की ड्यूटी करने वाले भी कोई गुरु लोग होंगे? भक्ति मार्ग तो 2,500 वर्ष चलता है द्वापर कलयुग में, लेकिन उसकी ड्यूटी कब होती है? रिहर्सल कब होती है? संगम युग में। संगम युग में बाप डायरेक्टर आकर के रिहर्सल कराते हैं, उस ड्रामा की शूटिंग कराते हैं। तो कोई ऐसे गुरु भी हैं जो अज्ञान युग में सुलाने की सूचित करा उन्हीं के डायरेक्शन से। भक्ति मार्ग के मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनते जाते हैं, जहाँ ढेर से ढेर लोग इकट्ठे होते, तो कितने सुनाया भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने शास्त्र सत्संगों में जाते हैं, समझते हैं हम ज्ञान सुनने जाते हैं। ये सत्संग है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, उनमें किस लिए जाते हैं? समझते हैं हम ज्ञान सुनने जाते हैं, परंतु ज्ञान दाता तो एक ही बात है, उनके कर्ता धर्ता तो अलग अलग लोग हैं, कोई एक तो है नहीं। बात के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं चाहिए, क्योंकि बात के पास ही ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है, और कोई मनुष्य मात्र के पास ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे सारे विश्व की सदगति हुई हो। कोई तो ब्रह्मा के पास पूछा क्या ज्ञान, फिर रिजल्ट क्या बताया? तो सारे विश्व की सदगति होनी चाहिए, तो जब सारे विश्व की सदगति नहीं हुई और ज्ञान दाता चला गया, तो ऐसे तो दुनिया में बहुत से मनुष्य महान महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने ज्ञान सुनाया या धर्म की स्थापना की, आए और चले गए, और दुनिया नीचे की नीचे गिरती रही, तो सदगति किसी की हुई नहीं, और ही ज्यादा दुर्गति होती जाती है। तो मनुष्यों के पास ये ज्ञान नहीं है सदगति का, इस समय सारी दुनिया सत्सों सहित समोप्रधान है। अब कोई कहे इसका क्या प्रूफ, सदगति का ज्ञान ब्रह्मा के पास नहीं था, ब्रह्मा कुमारियों तथा कथित के पास नहीं है, उन ब्राह्मणों के पास नहीं है, तुम्हारे पास है, इसका क्या प्रूफ? बिना प्रूफ और प्रमाण के तो कोई मानने वाला हो नहीं सकता, और होता है तो मूर्ख है, इसका प्रूफ बताओ। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? कहाँ बनाया? जिस संग में आए उसके तब तो सबको प्रधान बन गए, क्यों कितना माता है वो प्रधान नहीं बन गए, सतो प्रधान बन जाए तो फिर बीमारी बीमारी ना हो, मैं तो करवा की व्यवस्था हो जाए। ब्रह्मा के संग में नहीं आते थे क्या? अच्छा माँ का रूप था तो आते तो थे, ज्ञान तो सुनाया, ज्ञान माँ भी तो पहले ज्ञान सुनाती है ना।
माँ को भी था।
अच्छा ठीक, फिर गया कहाँ? कुछ भी तो बात ही नहीं थी।
अब जो है पास
ये कोई प्रूफ नहीं हुआ। हाँ किसी के पास प्रूफ हो तो बताओ
भाई,
वो सब पावन बनेगा। हाँ सबसे पावन बने हो तो हम मान लेंगे। बीमारी ब्रह्मा बाबा को बीमारी रहो तो तुम्हारी ब्रह्मा बाबा को बीमारी नहीं।
अरे जिसके सर से ब्रह्मा बाबा आते हैं उनका ये
बीमारी
ये कुछ नहीं, तो वो ब्रह्मा बाबा कहाँ बीमारी होना चाहिए? बीमारी उन्होंने कभी क्लास अपना मिस कर दिया क्या? ये कोई प्रूफ नहीं होते, प्रूफ ये है कि हर कार्य सूक्ष्म से स्थूल की ओर संपन्न होता है। पहले सूक्ष्म में सदगति होगी, फिर स्थूल में सदगति होगी, मन बुद्धि से सदगति की शुरुआत होगी, क्योंकि मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। अगर मन बुद्धि की दुनिया में लगी पड़ी है तो समझ लो दुर्गति है, देह और देह के संबंधों वो याद आते रहते। अगर विचार सागर मंथन चलता है तो समझ लो सदगति हो रही है। तो ये प्रूफ है किस बात का? तो परमात्मा पाप आया हुआ है तो उसका ज्ञान सुनने से अगर बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है किसी का, तो उनकी क्या होने लग पड़ी? उनकी सदगति की शुरुआत हो, क्योंकि पहले काम सूक्ष्म में संपन्न होगा, फिर अब अपना अपना देख लो, वो दूसरों को भी दिखाई पड़ेगा, जिसका मनन चिंतन मंथन चलता होगा वो दूसरों को भी देखने में आएगा, ये व्यक्ति तो कुछ बदल गया। तो मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान नहीं है, इस समय सारी दुनिया सबको सही समोप्रदान, समोप्रदान की बुद्धि तो चल ही नहीं सकती, इसमें रहने वाले भी समोप्रधान है क्या?
सातवां पेज 85-90 दिवाने नई दुनिया है ही सती, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया, किनको? देवताओं को जीत लिया। तो देवताएं कमजोर हुए या पावरफुल हुए? देवताएं कमजोर हो गए। तो अब देवताएं कैसे जीत जाएंगे? कहते हैं विधि से बैठे और अदिति से देवता पैदा हुए। वैसे पहले पैदा हुए थे तो वो बड़े क्या? वैसे पहले पैदा हुए और देवता बाद में पैदा हुए। पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका हुआ? कौरव और यादवों का। और फिर बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका हुआ? पांडवों। पांडव गुप्त रहे तो बात कहां थी? जरूरी संगमित ही बात है। छोटा बच्चा तो कमजोर ही होता है। फिर बाप जिसका साथी है वो पावरफुल हो जाए। तो द्वापर युग से जब से रावण राज्य शुरू हुआ उस समय बाप तो मौजूद ही होता नहीं। तो रावण के हाथ में देवताओं की राजाई चली गई। यहाँ उसकी शूटिंग हो जाती है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास, क्योंकि अब बाप आया हुआ है। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते। जब से पैदा हुआ तब से, जब पैदा हुए तब तो बाप साथ में है, नजरों के सामने है ना। छोटा बच्चा बड़ा बच्चा है, आतकाई बन कैसे जाएगा बाप के सामने? बाप तो आया हुआ है ना। अम्मा की गोद में तुम चाहे रूप से कर लेता। तो बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते तो तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप के पास। क्यों? क्या कहते हो? क्यों हम जाते हैं बाप के पास? क्यों जाते हैं? ये मतलब नहीं है। अरे आश्रम में लड़ाई लड़ी होगी तो छोटा बच्चा क्या कहेगा? हम जाते हैं बाप के पास। हाँ नहीं तुम्हारी दबाओ क्यों करेंगे? है आधुनिक बच्चे दबाव दे तो देवताई बच्चे क्या कहेंगे? लड़ेंगे नहीं, क्या कहेंगे? हाँ हमारा तुम्हारे दबाव, हम जाते हैं बाप के पास। तो तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप के पास, वो थोड़े कहते हैं। कौन? असुर थोड़े कहेंगे कि हम जाते हैं बाप के पास। बाप को स्वर्ग की बात चाहिए देंगे और क्या देंगे? बाप क्या देंगे? स्वर्ग की बात चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना कि बाप स्वर्ग की बात चाहिए देते हैं और वो गुरु लोग वो तो नरक की बात चाहिए। परंतु माया तुम बच्चों को भी बुलाए देती क्या कि बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं, स्थाई खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वो नीचे पद पाएंगे, न पढ़ेंगे फालतू फालतू बातों में लगे रहेंगे सुनने और सुनाने, और न दूसरों को पढ़ाएंगे तो ऊंचे पद भी नहीं पाएंगे। जाया भी जाता है सैकंड में जीवन मुक्ति। पहचाना एक ही बार, पहचानना पूरा एक ही बार होता है, तो एक ही बार में पहचानना चाहिए ना। तो बार बार पहचानना और बार बार भूल जाना है। सभी आत्माओं का बाप एक है, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है। तो सब आत्माएं तो एक जैसी पहचानने में हो नहीं सकती। जन्म जन्म 63 जन्म पता नहीं कौन कौन सी आत्माओं का संग रहा है। तो जिन जिन आत्माओं ने जहां जहां प्रभावित किया होगा वो आत्माएं यहां भी 2-3 पीरियड में प्रभावित कर देंगी तो भूल जाएंगे। तो पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, आया तो सब आत्माओं का बाप है, ये तो इम्पॉसिबल। बाप तो पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई कभी लाउड स्पीकर पर नहीं होती है। क्या ऐसे नहीं कि सब बच्चे मिलने आ जाए और लाउड स्पीकर चारों तरफ लगाए दिए जाए और बाप आकर के पढ़ाई पढ़ावे तो प्रश्न कैसे पूछेंगे? पढ़ाई में तो प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई नहीं होती। कोई कहे गुलजार दादी में बाप आते तो वहां तो लाउड स्पीकर लगा होता है, लाउड स्पीकर पर बाप आकर भी कभी पढ़ाई नहीं पड़ा। ब्रह्मा की सोल आ सकती है और कोई मनुष्य आत्मा आ सकती है, लाउड स्पीकर पर पढ़ाई सकती है, भाषण दे सकती है, लेकिन परमात्मा बाप सुप्रीम सोल लाउड स्पीकर पर पढ़ाई नहीं पढ़ा। टीचर पूछेंगे क्या बनना चाहते हो, वो तो लाउड स्पीकर पर पूछेंगे, तो बच्चे कहाँ कैसे आवाज पहुंचाएंगे उन तक, बच्चों की आवाज कैसे पहुंचेगी, तो कैसे रिस्पॉन्ड देंगे उनमें, तो इस चीज का सकते हो लाउड स्पीकर पर पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा सकती। तुम सब टीचर थे, कहा जाता है ना गीता पाठशाला, कहते टीचर हूँ गीता पाठशाला। गीता किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई, तो गीता पाठशाला नाम क्यों पड़ा? जब गीता का ज्ञान भगवान ने आकर के दिया है तो गीता पाठशाला नाम पड़ा। तो ये अक्षर भी कामन है, ये तो विचित्र है ना। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है भी। क्या ये जो पाठशाला जहाँ बैठे हो वो कोई कृष्ण की स्थापन की हुई पाठशाला तो है नहीं? फिर किसी की सोल ने ये पाठशाला स्थापन नहीं की, कृष्ण की आत्मा तो यहाँ पढ़ रही है। क्या सचिव में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? वहां तो पढ़ने पढ़ाने की बात होती नहीं, कृष्ण तो हुआ ही है सचिव में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल नहीं सकता। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ, एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता, तो कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है, बाकी वो शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के, आधा कल तो भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ। तुम जानते हो 5-4 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था, अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है, शांति धाम, सुख धाम और तीसरा दुख धाम। तो ये भारतवासियों के लिए ही है क्या? तीनों भारतवासियों को ही आकर के सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कंस कंस फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ आता रहूंगा, इनकी ईंद नहीं हो सकती, तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों की चक्र की, अब बाप को रचयिता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा को कोई रचता है, रचयिता अर्थात इस समय सतयुग को आकर के रचते, रचयिता किसका है? तमो प्रधान से सतो प्रधान में कन्वर्ट करता है। सतयुग में जिन्हों का राज्य था उन्होंने फिर गवाया, उन्हों को बैठ पढ़ाता हूँ, बच्चों को अडाप्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते, पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते। क्या तो तुम बुद्धि में ये समझ लो कि साधु संत के पास आए हैं साधु संत कहते ना, ये सब साधु आदमी है, तो किस अर्थ में कहते साधा साधु सज्जन। कोई साधु संत तुमको नहीं पढ़ाते हैं तो तुम्हें गलत फहमी हो जाए। कोई दुर्जन पढ़ाता है क्या? हाँ, बाप पढ़ाता है। बाप का मतलब अम्मा नहीं, कि बच्चा गलती भी करता जाए और उस बच्चे को गोद में इंसान भी देती जाए। हाँ, तो तुमको कोई साधु संत आदमी नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना, तो याद किया जाता है। किसको याद करेंगे? जितने कुछ दिया हो, प्राप्ति हुई हो, जरूर आएंगे भी ना। ये भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। जरूर पहले कोई प्राप्ति हुई है तो अब याद करते हैं, तो जरूर पते तो पावन बाप आते हैं। क्यों आते हैं? याद करते हैं तो पतितों को पावन बनाने वाले बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वह तो समझते हैं तुम लीन हो गए, अब फिर तो आ नहीं सकता। याद फिर पतित पावन से करते हैं, हम आत्माओं को फिर से बरसा दें। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा आया हुआ, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। आया खाए के लिए आया है, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, और आए और चला जाए और नई दुनिया की स्थापना हो नहीं तो बाप थोड़े ही हुआ। कौन हुआ है? कौन हुआ फिर? अम्मा हुई, बाप तो हो नहीं सकता। बाप की सिवाय नई दुनिया बनाई नहीं सकता कोई। नई दुनिया, नया संगठन, नई सरकार, तो बाप ही आकर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वो फिर भी अपने समय पर रज समय में नहीं आवेंगे। वो धर्म गुरु धर्म पिताएं कब आवेंगे? रजो और तमो समय में आवेंगे। तो जैसे समय में आवेंगे वैसा वो अपना पार्ट बजा। बाप कब आते हैं? संगम रात्रि के 12 बजे, आधी रात पूरी हो जाती है और दिन की शुरुआत भी हो जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम माता नागरिक फूल करते हैं, एक बात ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाए देता है। और इधर उधर भटकने की दरकार नहीं है, खुद नहीं बनता है। ये भी खास बात है क्या? जो बाप का पाठ होगा, जो भी शर्म को दिखाया जाता होगा संसार में, उसकी विशेषता क्या होगी, चरित्र क्या होगा? तो वो खुद तो फकीर बन के रहेगा और दूसरों को और बच्चों को राजा ही देता है, खुद नहीं बनता है। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आस नहीं रखते, हम तो निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे नहीं होता क्या कि कोई मनुष्य कर्म करे और उसका फल उसको न मिले? जैसा संस्कार दे जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता जरूर है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म ग्रस्तियों के पास लेकर के फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते, उनके ऐसे संस्कार होते। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते हैं? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। लड़ाई यहाँ लड़ी, अब यहाँ इस लड़की दुनिया में स्वर्ग तो है नहीं, तो स्वर्ग में जाएगा कहाँ से? तो कहाँ की बात है ये? तो इस महाभारत विकारों की युद्ध की बात है। इसमें लड़ाई लड़ते लड़ते अगर कोई मर भी गया, इस ज्ञान से वंचित हो गया, बाप का बच्चा बना और बन करके सुनिए, जो युद्ध में लड़ते लड़ते अगर मर भी जाते हैं तो उनको जन्म कहाँ मिलेगा?
नहीं, उनको अमर लोक में जन्म मिलेगा, अमरनाथ के कहाँ जन्म मिलेगा, अमरनाथ। तो यज्ञ के आदि में तो बहुत सी महात्माएं मर गई, ज्ञान छोड़ छोड़ करके चली गई, बाप की बनी और फिर चली गई, तो उनका अंजाम क्या होगा? फिर जरूर उनका दोबारा जन्म होगा, ब्राह्मण जन्म लेंगी, ब्राह्मण बनेगी और फिर बन करके किसके बच्चे बनेगी? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के बच्चे नहीं बनेंगे, वो बच्चे किसके बनेंगे? अमरनाथ बाप के अमर बच्चे बनेंगे। उन्हें कोई ज्ञान में मारने वाला पैदा नहीं है। हाँ, ये दूसरी बात समझे रही, संजीवनी बूटी जो हानि पड़े हटे तो हो जाए लेकिन मर नहीं पड़े। क्यों बालक राम? हाँ बात है, वे रात दूरात के में हटे तो ही गई थी। तो सन्यासी भी पुनर्जन्म ग्रस्तियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार संन्यास धर्म में चले जाते हैं। बाबा भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु वो तो इसका अर्थ नहीं करे। स्वर्ग का भी तो समय चाहिए ना, स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते। अब तुम जानते हो बात क्या समझा, गीता में क्या लिख दिया है सुनाते क्या है? कहते हैं भगवान वाच में सर्वव्यापी, गीता में ये थोड़ा ही कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, गीता में तो कहा है बिना जहाँ सूरज चांद सितारों का रोक प्रकाश पहुँचता है रोशनी नहीं पहुँचती, मैं वहाँ रुझ लोग कर रहने वाला। तो ये तो मैंने दूसरा अर्थ कहाँ से कर दिया, मैं सरक जाती हूँ। तो ये अर्थ किसने किया? मैंने देहदारी गुरुओं ने ये अर्थ कर दिया, तो निष्काम देहदारी हुए है? अपनी पूजा कराने के लिए परमात्मा को क्या कर दिया? सरक जाती कर दी। तो इसको निष्काम सेवा कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी कामना हो गई कि हम भगवान बन करके पूजा लें। अब तुम बच्चे जानते हो बात क्या समझा, गीता में क्या लिख दिया है और वो सुनाते क्या है? यही तो कि मैं सर्व व्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्व व्यापी हूँ, ये तो गाली है, सब में व्यापक हो जाए। अरे मैं तो एक व्यापी हूँ, एक में प्रवेश करता हूँ, ये सर्वव्यापी होता हूँ। कुत्ते बिल्ली सब में हूँ, जानवरों में भी मेरे अवतार दिखाई दिए कि मैं जानवरों में भी आता हूँ, जानवर जैसे मनुष्यों में भी आता हूँ। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हो ना, जानवर ज्ञान का सागर होगा क्या? जानवर तो जानवर कुछ ही, मैं जानवरों को पढ़ाने दूर ही आता हूँ। तो कितनी झूठ है, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूंगा कुत्ता बिल्ली, कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में नहीं है, सन्यासी आदि का मान कितना है, झूठी बातें सुनाते हैं और मान मर्तबा देखो कितना जानती है, क्योंकि पवित्र हैं तो उनका मान है। ज्ञान सागर नहीं है क्या? उनका मान क्यों है? है क्योंकि प्योर है तो उनका इतना मान है। पायन क्या बताया? पवित्रता। अच्छा, सन्यासी पवित्र है तो उनका मान है। अब तुम भगवान जी महाराज आए हैं तो तुमका अपवित्र हो, तुम्हारा मान नहीं है इस दुनिया में, जानते नहीं क्या? नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है भगवान को बिगड़ते हो, भगवान से ज्यादा पवित्र कौन होगा? ये दुनिया वालों की बात है, ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण जो है वो सबसे जास्ती मान देते हैं बाप को, सबकी बात है। ये सबकी बात है कि जो बाप के बच्चे बनते हैं वो बहुत मान देते हैं, बच्चे बनते हैं और सब वो कच्चे हैं। सन्यासीवादी का कितना मान है? क्योंकि पवित्र है, पवित्र है तो उनका मान है। हाँ, है स्वर्गवाद वाले ज्यादा मानते हैं किसको?
बाप को सन्यासी वो नहीं मानते है। सत्युग में फरुखाबाद में गंदगी लाइन होगी हमें लगता है। गंदगी लाइन जो है वो फरुखाबाद जिला में तो नहीं है, है? काली इंद्री है कि हेल्पेज तो नहीं आती है वहाँ है, नहीं आती है। अच्छा भरी हुई आती खाली आती है? है? काली इंद्री जब नाव है तो कोई बाता हो क्यों नाव भरे गए? बहुत दूर से आओ क्या कहाँ से ये भरी हुई आओ। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। क्या ये कहावत कहाँ की है? कहते हैं भक्ति मार्ग में कि तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो ये कहावत कहाँ से शुरू हुई? यादगार त्योहार कहावत है ये सब है कहाँ की? तो जरूर संगम युग में ही ये कहावत चरितार्थ हुई है प्रैक्टिकल में। क्या कि परमात्मा ही आकर के पतियों का पति और बापों का बाप बनता है, और वो परमात्मा बाप जब बनता है पति बनता है और बच्चे जब उसके बनते हैं तो उनको अंत में जब संपूर्ण स्टेज होती है तो ये एहसास हो जाता है कि वास्तव में हमारा पति ही बाप टीचर गुरु ईश्वर सभी कुछ है, दुनिया में हमारा सहारा कोई है नहीं। भटक भटक के देख लेते हैं तब अंत में ये निश्चय कर ले। तो यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना, एहसास नहीं कराते, सिर्फ कहते हैं। क्या दुनिया वाले कहते हैं कि तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है, एहसास नहीं कराते, और यहाँ बाप आकर इस बात का प्रैक्टिकल में एहसास कराए देते हैं, कक्षा बुद्धि में ये बैठाए देते हैं। क्या कि तुम्हारा पति ही बाप टीचर गुरु सब कुछ वो ही है। वह तो सब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतु प्रधान। क्या ये बात कब समझाई जाती थी भक्ति मार्ग? जब भक्ति सतो प्रधान थी तब ये बात समझाई जाती थी कि तुम्हारा बाप टीचर गुरु पति ही है तुम्हारा, वो ही तुम्हारा ईश्वर है परमेश्वर है, पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। और जब भक्ति समय प्रदान होती है तुम ये नहीं दिखाते क्या कि तुम्हारा पति ही सब कुछ है? कह देते हैं पति सब कुछ नहीं है, तुम्हारी परवेश नहीं करता तुम नौकरी कर ले मारो तुम्हें। क्या भक्ति जब सतो प्रदान होती है तो अनुसुईया ने ये सिखाया क्या कि गुरु कैसा भी हो पति कैसा भी हो लेकिन उसको परमेश्वर की तरह मानो, क्योंकि मिला सब है पूर्वज के अपने कर्मों के अनुसार ही तो वो तुम्हारा पति बना है। पूर्वज ने ऐसे कर्म किए हैं तुमने तो तुमको ऐसा पति मिला है, तो अब जिस रूप में भी तुमको मिला है क्या करना है तुमको? तुमको उसमें निभाना है। अगर निभा करके पास हो जाओ तो जीतो, नहीं तो ये बंधन क्यों बना? बंधन किसने बांधा? बंधन तो अपने कर्मों का बंधन होता है, तो ये बंधन बनो तो उस बंधन को पूरा करना चाहिए ना, निभाना चाहिए ना। तो कलयुग में ऐसा नहीं सिखाते समो प्रधान युग में। क्या तो पति तुम्हारा था परमेश्वर है, सतयुग में तो गुरु नहीं था, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं। क्या कहा? जब भक्ति की शुरुआत होती है तो गुरु नहीं होते, क्या बाप ही रास्ता बताता है बच्चों को, गुरु कोई न वहाँ गुरु होते हैं सतयुग में और न वहाँ कोई सलाह देने वाला मंत्री होता है। मंत्री और गुरु कौन होता है? बाप ही होता है। तो भक्ति की शुरुआत में भी गुरु नहीं होते, पति ही सब कुछ होता है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम बच्चे समझते हो, इन बातों को कि सतो प्रधान भक्ति की भी शूटिंग कहाँ होती है, संगम युग पर शूटिंग होती है। जब सतो प्रधान भक्ति शुरू होती है तो बाप के भक्त भी है, तो बाप की प्रजा भी है, तो बाप के वारिस भी है। क्या बाप के भक्त नहीं है? तो जब बाप के बच्चे हैं तो उस समय सतो प्रधान स्टेज होती है, तो एकदम समो प्रधान, तब तो सतो प्रधान स्टेज होती, तब उनकी बुद्धि में होता है कि हमारा पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो ये यहाँ का गायन है भक्ति मार्ग में, जो सतो प्रधान भक्ति के समय ये सिखाते हैं कि तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। भक्ति के आदि में भी तो ऐसा मानते हैं, ये मान्यता चलती है। फिर बाद में जब भक्ति समो प्रधान हो जाती है तब तो ढेर गुरु किए जाते, पति भी बदल लेते, क्योंकि समो प्रधान धर्मों की शुरुआत हो जाती है। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? डरने की क्या बात है? क्यों भाई? इसलिए डर जाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आई है तो ऐसा न हो कि हमारी घरवाली को, हमारी घरवाली को ज्ञान सुना दे और भगवान का बना दे, तो हम तो काउ दिन बिना रहे हैं। क्योंकि समझते हैं ये तो भाई बहन बनाती है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, हम तो तुम्हें ब्रह्मा की औलाद बनाए रहे, ब्राह्मण बनाए रहे। तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कलयुग में तो सब शुद्ध हो जाते हैं। हम तो झूठे ब्राह्मणों को भी सच्चा ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद बनाए रहे प्रैक्टिकली, तो डर जाने की क्या बात? ब्रह्मा की औलाद बनोगे तो आपस में क्या हो जाओगे? भाई बहन तो हो जाओगे ना, तो अच्छी बात है ना। बीके ही सरस का वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा कुमार बनेंगे तो सरस का वर्षा ले, ब्रह्मा के बच्चे स्वर्ग में जाते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो, दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। दोनों कौन? यहाँ तो ब्रह्मा का ही टाइटल हो गया प्रजापिता, तो जो ये तुम्हारी गलती है, जो ब्रह्मा के आगे प्रजापिता का टाइटल नहीं लगाते। बाबा ने तो मुझे में डायरेक्शन दे दिया, ये तुम्हारी कहनाओ से बाबा कहने लगे। बाकी तुम्हें तो बाबा ने समझा दिया है ना कि तुम अपने को ब्रह्मा कुमार क्यों लिखते हो, तो बाप के भी हो, तो दिन के ही बरसा बरसा लेते हैं। अभी तुम ले रहे, तुम जी के बने हो, दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। दोनों कौन? स्त्री पुरुष है, दोनों कहते हैं हम भाई बहन। शरीर का भान विकार की बात निकल जाती है तो कहते हैं हम भाई बहन। कहते हो है? दोनों कहते हैं हम भाई बहन है? तुमने एक ने कह दी कहाँ से कहा उसे, क्यों राम कुमारी तुम्हारा भैया कहाँ? राम कुमारी कहाँ है? बाबा पूछ रहे हैं तो बता दो फिर, तुम्हारे भैया कहाँ है? तुमने बहुत देर करी। अच्छा राज बाबू तुम बता दो तुम्हारा भैया कहाँ? बेटा भाई बिरयानी है बताओ है भैया बनो है तो कह दिए। हाँ हाँ बहन हाँ सेठ जो मालूम पड़ गए कौन कौन झूठ हो कौन सच्चे हो। अरे जब नाम है राजबहादुर राजबहादुरी तो राजबहादुर राजबहादुरी बहादुरी नाम है तो तो बोलो बोलो अरे परसेंटेज कम हो गई तो दोनों कहते हैं हम भाई बहन शरीर का भान विकार की बात निकल जाती है हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जाए सकते ये तो महान पाप है ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में बाप ने रखी हुई सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग वो क्या करते हैं वो तो छोड़ के चले जाते हैं तुमको कोई छोड़ना छोड़ना भाई बहन बन जाओ कोई भाई अपनी बहन को छोड़ देता है क्या बाप छोड़ने की बात ही उनका तो निवृत्ति मार्ग है तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाली अब तुम्हें इस चीज दुनिया का रकम रिवाज को छोड़ करके उस दुनिया को ही भूल जाए कौन सी दुनिया जिसने सीखी रकम रिवाज तुम स्वर्ग के मालिक थे फिर रावण ने तुमको कितना सीखी बनाया तो ये भी बाबा ने समझाया है कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं ये तो अच्छा हम कहते हैं ना 84 जन्म नहीं लिया होगा तो यहाँ ठहरेगा ही क्या कहा क्या हाँ भागने वाले समझ ले क्या जिन्हें पूरे 84 जन्म लिए होंगे वो यहाँ ठहरेंगे हाँ अब कृष्णा माता घर है आ जाने वाली कृष्णा माता घर है आ जाने वाली है हाँ बुद्धि से ठहरेंगे कोई सूर्य में ठहरने की बात नहीं है 84 जन्म नहीं लिया होगा तो यहाँ ठहरेगा कहाँ बाबा के पास उसकी बुद्धि ठहरेगी नहीं इधर उधर भाग जाएगी समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं ये जरूर दूसरे धर्म का है या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के कुछ न कुछ रहा जरूर ये स्वर्ग में नहीं आए सके 84 जन्म लेने वाले स्वर्ग में नहीं आते क्या जो न लेने वाले होते 83 जन्म लेने वाले क्या स्वर्ग में नहीं आएंगे आएंगे तो लेकिन बाप जिस स्वर्ग की बात करते हैं जिस स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं 16 कला संपूर्ण का उसमें नहीं आएगा हाँ सच्चे देवता बनेंगे सच्चे देवता नहीं बनेंगे कन्वर्ट होने वाले बनेंगे तो पदवी कम प्रजा में जन्म ले प्रजा में भी अच्छा पद और कम पद होते हैं प्रधान प्रजा में भी कोई फर्स्ट क्लास प्रजा और कोई फोर्थ क्लास प्रजा तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है भगवान आकर के किंगडम में स्थापन करते हैं क्या था ये पहचान है भगवान आकर के करेगा क्या ऐसे नहीं आके चला जाएगा और फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी किंगडम में स्थापन करते रहेंगे राजा ही स्थापन करते रहेंगे नहीं भगवान आता ही है हम बच्चों के लिए राजा ही राजधानी स्थापन करने के लिए राजधानी स्थापन करके सब वापस जाता है हम लोग हम बच्चों को वापस लेते हैं तो बैकुंठ का मालिक था वो कोई राजा ही स्थापन नहीं करने वाला है स्थापना बाप करके क्या श्रीकृष्ण बैकुंठ का मालिक बनता है विश्व का मालिक नहीं बनता और उस बैकुंठ की स्थापना कौन करते हैं बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे श्रीकृष्ण ने ये पद पाया फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं है तुम पढ़ करके पद पा लेते हो फिर थोड़े गीता का ज्ञान पढ़े क्या ये भी एक पहचान बताई कोई कहे हमें तो राजा ही बाबा दे गए तो जब राजा ही बाबा दे गए तो फिर गीता ज्ञान क्यों पढ़ रहे फिर तुम्हें तो गीता ज्ञान पढ़ने और पढ़ाने की दरकार फिर तो नहीं होनी चाहिए तो ये तो बात तुम झूठ बोलते हो कि हमें बाबा राजा ही दे गए
अभी
अभी नहीं हुआ तो वो कौन करेगा? वो बेहद की राजाई क्यों स्थापन करोगे? हद की राजाई शिव बाबा दे गए, ऐसी बात? अरे शिव बाबा बेहद का बाप है तो बेहद की राजाई आकर के देगा, हद की राजाई थोड़ी देगा, हद की राजाई तो लोग ज्ञान से सदगति मिल गई। फिर ज्ञान लेने की क्या दरकार? जब सदगति हो जाए फिर तो ज्ञान लेने की दरकार और देने की दरकार रहती। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंचे पद पाएंगे, जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वो अभी भी करते रहते। साक्षी होकर के देखो, ब्राह्मण ब्राह्मण को भी देखना है, ब्राह्मणी को भी देखना है। इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मान दिन बहुत कोशिश करनी है ऊंचे ऊंचे बनने की। मूल बात है तम प्रधान से सतो प्रधान बनना, ये समझने की बात है ना कि तम प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनते। दृष्ट व्यवहार में भी रहना है, ऐसे नहीं तम प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए फिर दरबार छोड़ जाओ, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। घरवार को छोड़ जाने से पावन नहीं बनेंगे। यहाँ सब पतित है, कहा इस दुनिया में चाहे गृहस्थी हो चाहे संन्यासी हो है सब पतित। तो ये गलत फहमी हो जाए, अरे गृहस्थी में रहेंगे तो पतित होते रहेंगे तो कोई फायदा? फायदा नहीं, इसलिए छोड़ छाड़ो नहीं। यहाँ तो सब पतित है, इसमें तो दुख ही दुख है। इसमें इस दुनिया सुख का राज्य कब था किसको पता नहीं है। ऐसे नहीं कि हम भगवान के पास पहुंच गए तो सुख के राज्य में पहुंच गए, श्री राम राज्य में पहुंच गए, नहीं। वहां भी राज्य किसका है? वहां भी माया बेटी भूजी बैठी है, राज्य किसका हो जाता है? भगवान के घर में भी फिर किसका राज्य हो जाता है? माया बेटी भूजी बैठी तो माया बेटी का राज्य हो जाता। यहाँ सब पतित है, सब दुखी कहते हे भगवान हे राम ये दुख क्यों दिया? तो क्या हे भगवान हे राम सामने बैठे हैं? मछुआरी में कहते हैं ना, हे भगवान हे राम हमको ये दुख क्यों दिया? तो हे राम हे भगवान कब कहा जाता है? तो सामने हो तो कहा जाता है, भक्ति मार्ग में तो सामने होते नहीं, तो यादगार कहाँ किए? सन्मन की यादगार है। कुछ बच्चे हैं श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपन चलाते हैं, तो फिर माया उनको दुख की दुनिया में ढकेल देती है। सब कहते हैं, क्या कहते हैं? हे राम हे भगवान तुमने हमको ये दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, भगवान तो सबको सुख ही सुख देते हैं, रावण दुख देते हैं। तो ये भी गलत कहनी चलती है कि तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। तो भगवान कोई सुख दुख दोनों नहीं देता है, ये तो अपने अपने कर्मों का फल देता है। चाहे ब्रह्मा कुमारी क्यों न बन जाए, ब्राह्मण बनने के बाद भी कर्म तो अच्छे बुरे दोनों करते हैं ना, तो जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा क्या? जहाँ सुख की दुनिया होगी, बाप की स्थापन की हुई दुनिया, उसमें कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। एक ही धर्म होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही राज्य होगा। और अभी रावण राज्य, ये सब बातें अलग अलग, कोई धर्म नहीं होगा वहाँ। फिर बाद में और धर्म आएंगे, तुम धर्म कहाँ भी चले जाओ, पढ़ाई साथ है और मन मना भाव का लक्ष्य तो मिला हुआ। लक्ष्य कौन सा मिला हुआ है? ये लक्ष्य बुद्धि में रहे कि हमको मन मना भाव बनना है। मन मना भाव माने मत मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। तो भगवान कहते हैं मेरे मन में समाज। तो सागर में अगर कोई समा जाए, एक लोटा पानी सागर में डाल दिया जाए तो क्या हो गया? सागर ही हो गया। तो ऐसे ही कोई आत्मा अगर अपने मन के अंदर जो भी संकल्प चलते हैं वो सब ज्ञान सागर में अपने संकल्पों को डुबा दे, तो उसके संकल्प भी कैसे चलने चाहिए? जो बाप के संकल्प तो बच्चे के संकल्प, तो संकल्पों तक समानता है, होनी चाहिए, ये लक्ष्य रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाप के संकल्प से भी कोई हमारा संकल्प टकरा जाए, तो लक्ष्य से हम दूर हो गए। वाचा की तो बात ही दूर, वाचा के टकराने की तो बात ही नौबत ही ना आए, और करुणा से टकरा कर ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो ये तुम्हारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? मन मना भव का ये तुम्हें लक्ष्य मिला हुआ। अगर ये लक्ष्य धारण करेंगे तो लक्षण आ गए। अगर लक्ष्य ही धारण नहीं किया तो हमें बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, बातें ना अच्छी लगती, उनके बुरे संकल्प करते समझे। अरे बाप के भी किसी बच्चे के प्रति बुरे संकल्प नहीं लगे, बाप कभी अपने बच्चों का कल्याण, चलो प्रजापिता ही सही, प्रजापिता अगर अपने बच्चों का कल्याण चाहे तो फिर नेक्स्ट टू गॉड है, क्यों बाबा उसको क्यों कहेंगे? प्रजापिता को नेक्स्ट टू गॉड क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में जितना कल्याणकारी परमात्मा है उतना तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई कल्याणकारी है तो प्रजापिता वाली क्यों लें? क्योंकि 500 करोड़ मनुष्य आत्मा उसी के, उसी बीज के बच्चे हैं, उसी के पत्ते हैं। वो प्रजापिता अपने स्वरूप को सबसे पहले पहचानता है, और जो अपने स्वरूप को पहचान लेगा वो अपनी रचना से भी नफरत नहीं कर सकता। तो मन का भव का लक्ष्य तो मिला हुआ है, बाप को याद करो, बाप के हम स्वर का वर्षा ले रहे हैं, ये भी याद नहीं कर, ये याद पक्की चाहिए क्या कि हम बाप की स्वर का वर्षा ले रहे हैं, ये याद पक्की से नहीं होगी है? जो ये समझेंगे बाप आया और चला गया उनको ये याद पक्की होगी, या ये जो समझेंगे कि बाप आया हुआ और हम उसे वर्षा ले रहे पढ़ाई पढ़ रहे उनको ये याद पक्की होगी? हाँ, जिनके सन्मुख बाप बैठा हुआ उनको ये बात पक्की होगी कि बाप से हमको वर्षा लेना है। जिनकी बुद्धि में ये बैठ गया कि बाप आया और बाप चला गया, तो चला गया तो वर्षा भी मिलाई, तो अब क्या मिलेगा? फिर पक्कापन तो होना हो ही नहीं सकता, तो फिर अंतमति से गति क्या? अगर अभी ये बुद्धि में पक्का बना रहेगा कि हमको बाप से वर्षा लेना है, हम ही बाप से वर्षा लेंगे, लेकर ही छोड़ेंगे, तो ये संकल्प पक्का होते होते क्या होगा अंत में? अंत मते तो गति हो जाएगी, चल में पहुंच जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सीखी लीजिए बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद किया और बुद्ध कैसे बाबा कभी बच्चों के बहुत डरा सा पहले ही बता दे, कैसे बच्चों को याद किया? मीठे मीठे बच्चों, नीचे नीचे बच्चों को याद क्या क्यों? कड़ुए बच्चों को याद क्या क्यों नहीं? वह तो दुनिया है, दुनिया में यही करते हैं। नीचे भी तो आप पापा कड़ुओं कड़ुए छू छू और भगवान आए भी नहीं बात करिएगा है? तो भगवान भी साधारण तन में आता है, साधारण तन में आता है तो कर्म भी कैसे करेगा? साधारण कर्म करेगा। तो मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार, क्या याद प्यार गुड मॉर्निंग कौन से बाप की? बाप पिता बाप दादा का तो शरीर में होंगे कि रूहानी किन्तु बिंदु साकार शरीर में होंगे। याद प्यार गुड मॉर्निंग मीठे मीठे बच्चों को, और रूहानी बाप हो तो रूहानी बाप के लिए तो क्या बीच है और क्या करिए? तो रूहानी बाप है, रूहों का बाप है, रूह है चाहे कड़वी हो और चाहे मीठी हो, रूह है जो है वो तो रूह है, वो तो न मीठी और न कड़वी। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, वो भी झुकता किसको है? रूहानी यानी आत्म की स्टेज में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको झुकता है, नमन करता है,
और जो देह अभिमान की स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं उनको रूहानी बाप भी झुकने वाला नहीं होगा।